और तीर्थ में रहता है और अपराधों को समझता है, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव को मारना नहीं चाहिए, सूत्रकारी नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और उन्हें चकित करता है, तो फिर क्या हुआ? तो वो तो वज्रडेप हो जाता है, महाअपराध, वो नहीं दूर होता है। और नहीं जान करके यदि कुछ करते हैं तो वो पहले रोज सुनते हैं हम लोग और फिर भी याद नहीं है। जानते हैं कि ठाकुर जी की, गुरु जी की, वैष्णव की सेवा करना चाहिए किंतु फिर नहीं करते, कहते हैं रुचि नहीं है, फिर कैसे होगा? हम सुनते हैं प्रतिपुत दिन श्रद्धापूर्वक भगवान के लीला कथाओं का चिंतन, सवेरे में कीर्तन, आरती और कुछ सेवा काम करना चाहिए। गुरुगृह में कैसा रहा जाता है ये भी हम लोग सुनते हैं। गुरु गृह माने रहना माने संतों का संग, और यदि पालन नहीं करेंगे तो ये सुन करके क्या? जो पालन नहीं करते हैं और सुनेंगे उनके लिए ये 20 वृक्ष हो जाता है। इसलिए खूब सावधानी के साथ में, बड़ी मुश्किल से हम लोग घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करने आए हैं, थोड़ी सी उत्तेजना में सब कुछ भूल जाते हैं। क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए, सबसे मीठी बात सुननी चाहिए, व्यवहार सबसे नंबर में। यदि हमसे उच्च वैष्णव हमें कुछ डांट फटकार कर देता है, एकदम तू तकारी करके लड़ मत जाओ, सोचो समझो और विचार करके उनका अनुगत में चलो। केवल हमारी बात सब मानेंगे और किसी की परस्पर नहीं मानेंगे तो फिर मत कहते क्या, तो सब वैष्णव की क्या हुई? इसलिए ये सब चीजें हैं, सुनते हैं हम लोग और फिर भी नहीं पालन करते, वैसा भजन नहीं करेंगे। सवेरे देखते हैं कि कोई काम नहीं है, बैठे हैं बेकार के, किंतु यहाँ पर कीर्तन में नहीं। अरे कीर्तन एक जरूरी चीज, भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम ठाकुर के, गोविंद दास के, महापुरुष के परंपराओं के कीर्तन उसमें होते हैं। कुछ ना करें उसको दोहराएंगे तभी एक भजन हो जाता, किंतु उसका मूल्य हम लोग उसी समय में जितने बाहर के काम, उसी समय सोएंगे, उस समय दांत धोएंगे, उस समय पैखाने जाएंगे, टट्टी जाएंगे, यही साधु संग है। दिन भर में तो थोड़ा सा समय वो होता है, अभी शाम का। इसलिए भाई इस सेवा को भगवान का यह प्रेम देने वाली सेवा है ऐसा समझ करके सेवा करो। भगवान का प्रेम देने वाली ये हरि कथाएं हैं, उनको प्रेम से सुनो। यहाँ पर अनायासी जो चीज हो जाता है, ठाकुर जी की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, हरि कथा कहाँ मिलेगा 14 भुवनों में? ऐसा सोचो कहाँ मिलेगा? एक आदमी यदि बाहर का आदमी मठ में आए तो उसका कितना खर्चा है? बाहर का एक गृहस्थ आए मठ में रहेंगे, बतलाओ जैसे एक महीना खाने में ही उसको कितना लग जाएगा? कम से कम 20 रुपया भी रखा जाए तो 600 रुपया केवल खाना, और रहेगा तो उसके लिए भी तो रहने का भी तो ये है, तब ये साधु संग करेगा। और तुम लोगों को सहज ये उपलब्ध है, खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ, और तब फिर साधु संग नहीं होगा। उस समय में घूमेंगे, विचार नहीं करेंगे, वैष्णवों से लड़ेंगे झगड़ेंगे, कैसे हो? और किसो बात, हम भी यदि कुछ कहें तो हमसे भी लड़ जाएंगे, क्योंकि अच्छा अभ्यास हो रहा है। पहले वैष्णव से होगा, इसके बाद में गुरु से होगा, और इसके बाद में किससे होगा? एकदम भगवान से, एकदम रिहाई हो जाएगी। ऐसा ही होता है, भजन मार्ग मर्यादा है, अभी हम लोगों का साधन मर्यादा है, मर्यादा के साथ, अन्य तो मर्यादा ही कोई नहीं रहेगी। मर्यादा भंग साहित्य नारे महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं नहीं सह सकता। इसलिए ये सब चीजों को समझ करके, देख करके मठ का व्यवहार कुछ सुंदर से होना चाहिए, परस्पर प्रीति होनी चाहिए। बाहर के लोग आए उनसे प्रीतिपूर्वक मिलेंगे, उनके अंदर में भक्ति वृत्ति लाएंगे, यदि नहीं जानेंगे तो कैसे हो? एक एक श्लोक याद करें प्रतिदिन, जैसा साधु संघ में कहा गया, उसके भाव को समझे और उसको एक श्लोक अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो। जैसे ये कह रहे हैं, हम लोगों ने इसका अर्थ बतलाया, भरत जी रघुगण राजा के प्रति बतला रहे हैं, अहो निजन्म अखिल सो जन्म शोभनम, कि जन्म भी सपरई अतामस्मिन न जद्रिषि केश जसा कृतात्मनां महात्मनां ज प्रचुर समागम। कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मनुष्य जन्म समस्त जन्मों की अपेक्षा से तो रोज रोज सुनते हैं, इसमें नई सी कौन सी बात हो गई, कोई नई बात है इसमें, रोज ही तो सुनते हैं। अरे सुनते हो किंतु अनुभव तो नहीं कर रहे, अनुभव करो तो क्यों। अखिल जन्मों की शोभा मनुष्य जन्म में ही केवल भगवत भक्ति, दूसरे किसी जन्म में नहीं भगवत भक्ति होगी। इसलिए समस्त जन्मों की शोभा है भगवत भक्ति, ये मनुष्य जन्म में ही करूंगा अपने, आप सभी हमारे मान्य है किंतु करूंगा आपकी अपनी का, तो कैसे भक्ति होगी। हम तो अपनी जितने अभ्यास हैं विचार हैं सबको छोड़ छाड़ कर जैसे गुरु वैष्णव कहेंगे वैसा चलूंगा। पहले मठवास का यही सबसे पहला नियम, हमने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है समझा है वो सब हम छोड़ दें और यहाँ पर नए संस्कार से सब सुनेंगे समझेंगे करेंगे, नया नया संस्कार सभी कुछ अपने हृदय में भरेंगे और उसको पालन करने की चेष्टा। ये पहले जिस दिन आएंगे उसी दिन परिकल्प ये करना पड़ेगा, संकल्प प्रतिज्ञा, अपने विचारों को छोड़कर हम गुरु वैष्णव के विचारों को भागवत के विचारों को हम ग्रहण करेंगे। पहला भगवान की सेवा तब अपना स्वार्थ, सोना खाना पीना नहीं, वैष्णव का आदेश पालना पालन कर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव का आदेश पालन करने के लिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए कोटि कोटि वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेता। यदि इसके लिए हमको सब कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, ये तो है भजन, भजन का संकल्प चाहिए। तो मनुष्य अखिल मनुष्य जन्मों की शोभा है भगवत भक्ति, ये मनुष्य जीवन में ही होती है। इसलिए कितनी उम्र हुई, 24 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, बड़े दिमाग से कहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र हो, अरे ये तुम्हारा ये सब 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष का ये तो गया, तुम्हारा रहा उतना ही, अभी कितना दिन रहेगा कोई गारंटी नहीं, इसी बीच में भक्ति कर लो, तन मन धन विचार बुद्धि वाक्य सबको लगा लो। इसलिए समस्त शरीरों में देवताओं का शरीर श्रेष्ठ है, किंतु उसकी क्या जरूरत है, उसमें तो भगवत भक्ति होगी नहीं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सुंदर सुंदर, रशिया में बहुत सुंदर सुंदर शरीर वाले लोग हैं, किंतु क्या होगा, भगवत भक्ति का कोई संभावना नहीं। उनको अपना स्वभाव चरित्र बदलते बहुत मुश्किल लगे। हम लोगों के आर्य ऋषियों की संतान होने से हमारे रक्त में कुछ कुछ है, सहज रूप में हो जाएगा। मान लें कि एक आदमी 25 वर्ष तक मांस खाया, इसके बाद में छोड़ करके इधर आया, किंतु मांस से ये जो शरीर गठित हुआ है इसका कुछ प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों के लिए बड़ा भारी कठिन, बहुत चेष्टा करने पर भी सिद्ध पावन निमित्त धरातली विचरण कर। साधु लोग क्या करते हैं, महत्पुरुष लोग हैं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए इस धराधाम में विचरण करते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। साधु लोग कहां मिलेंगे, नवद्वीप में मिल सकते हैं, मायापुर में मिल सकते हैं, गौरमंडल में मिल सकते हैं, महाप्रभु का पवित्र किया हुआ जो धामपुरी है वहां पर मिल सकते हैं, कुछ इस ब्रजमंडल में मिल सकता है। क्यों, एक तो साधु अपने से उच्च श्रेष्ठ साधुओं का संग करने के लिए आएंगे और तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तीर्थों में भजन करना जरा स्वाभाविक है, सरल है, कोई अधिक कष्ट नहीं। इसलिए भोगों की बात चिंता करके, खाने पहनने की ये सब अधिक चिंता छोड़ करके, कर्म की कुशलता छोड़ करके, साधु का जो यथार्थ संग है उसको करो। संग माने क्या? संग माने सम्यक रूपेण गमनम अनुगमनम, जैसा चलते हैं, जैसा कहते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा भजन करते हैं, ये परिपाटी को ग्रहण करने का नाम संग। यदि साधु के साथ में लाख वर्ष रहो और उनके विचारों का अनुगमन नहीं किया, जैसा बोलता है, जैसे चलते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, कैसे अष्टकालीय भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु वैष्णव की सेवा होती, ये जब भी नहीं हमने सीखा तो वैष्णव संग नहीं हुआ। पहले भी बतला चुके हैं, विषयी लोग जैसे विषयी लोगों का संग करते हैं, उसी प्रकार से साधु लोग साधुओं का संग करें। जैसे उनकी सारी वृत्तियां उनमें आ जाती है, साधुओं की सारी वृत्ति उनमें आ जाती है। महत्व लोग कैसे हैं उनके लिए बतला रहे हैं। ऋषिकेश जसः कृतात्मनम महात्मनम, अर्थात ऋषिकेश के जो लीला चरित्र हैं उनका जो जस है, उनसे जिनका चरित्र चित्त शुद्ध हो गया है और कोई कामना वासना नहीं है, संत पुरुषों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और वैष्णव की सेवा करते हैं और हरि भजन करते हैं निश्चिंत होकर के, ये लोग संत पुरुष। इसलिए जिनका ऋषिकेश का जस चिंतन करने से, वर्णन करने से, गुणानुवाद करने से जिनका चरित्र शोभित हो गया है, चित्त शोभित होने का लक्षण क्या है? विषयों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों में अनुरक्ति, वैष्णव की सेवा में अनुरक्ति, गुरु की सेवा में अनुरक्ति। यहां पर भगवान कहने से ही वैष्णव और गुरु और भगवान तीनों को समझ लो। भगवान के प्रति तो खूब है, दिखाते हैं, किंतु वैष्णव को सम्मान नहीं देते, उनका कदर नहीं करते, मर्यादा नहीं देते, तो भाई वो भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। समझे? गुरु का तो सम्मान नहीं किया, भगवान का तो क्यों नहीं होगा? अरे भगवान वैष्णव भी, साधारण वैष्णव भी ये भगवत स्वरूपी है, इसलिए उनका भी असम्मान नहीं है। ये वैष्णव तो वैसे नहीं है, नहीं है, अब उनका चित्त शोधन होने जा रहा है, संकल्प जिन्होंने ले लिया है वो वैष्णव, ऐसा समझो। त्रुटि हो सकती है कुछ, वैसे तो हम महापुरुषों को भी नहीं समझ सकते, उनमें हम त्रुटि खोजेंगे, परीक्षित महाराज में भी खोजेंगे, सुखदेव गोस्वामी में भी खोज लेंगे, व्यास में भी खोजेंगे, नारद जी के चरित्र में भी खोज लेंगे, परंतु है नहीं। कृष्ण के चरित्र में खोजते हैं दुष्ट लोग, इसलिए भगवान के की कथाओं को, उनके जस को जो वर्णन करते हुए सुन करके जिनका चरित्र निर्मल हो गया, अब किसी की निंदा नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, सबको मर्यादा देते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं और सर्वक्षण भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा का अतिरिक्त कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों को साधु समझो और इनका संग करना चाहिए। अथवा ऋषिकेश का कीर्तन जो है, उनके जो लीला कथाएं हैं, उनका नाम है जो कीर्तन करते हैं सब समय, और उसे उनका चरित्र चित्त पवित्र हो गया। जितने भी चित्त को पवित्र करने वाली बातें हैं, भक्ति हैं, उनमें नाम संकीर्तन सबसे। मैं तो समझता हूं कि उसके पहले कुछ श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण नहीं करने से चित्त निर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान की कथाओं का, वैष्णव की कथाओं का, विशेष करके वैष्णव का चरित्र सुनने से हृदय निर्मल होता है। जैसे रघुनाथ दास का गोस्वामी का चरित्र निर्मल है, उनके चरित्र यदि श्रवण करें और वैसा करने की चेष्टा करें तो हमारा हृदय भी निर्मल हो, अन्यथा लाख कोटि वर्ष नहीं होगा। कोटि जन्म यदि करे श्रवण तब उतना पाए कृष्ण पद नहीं मिलेगा, लाख कोटि जन्म में भी दीक्षा लेने पर भी नहीं होगा, वो दीक्षा ही नहीं हुई। इसलिए समझो कुछ दीक्षाएं व्यवहारिक रूप में होती हैं और कुछ विद्वत रूढ़ी से होती है। विद्वत रूढ़ी मैंने क्या, यथार्थ दीक्षा, और अविद्वत रूढ़ी मैंने एक अनुष्ठान कर दिया, दीक्षा दे दिया, उस शिष्य गुरु शिष्य क्या कर रहा है कोई भी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है, बस दीक्षा हो गई। आपकी दीक्षा हो गई? हाँ मेरी दीक्षा हो गई। कब हुई? अरे 10 वर्ष पहले। एकादशी करते हैं तो नहीं तो नाम करते हैं हरि नाम? हाँ करता हूँ। कितना? तो कभी एक फेरा हो जाता है और यदि काम अधिक रहता है तो उस दिन नहीं कर पाता हूँ। दीक्षा हो गया कहाँ? कृष्ण के संबंध में कुछ नहीं जानते। अच्छा आप दुर्गा जी की उपासना भी तो करते हैं ना? हाँ खूब करता हूँ। और गणेश जी की? हाँ उनका बिना रोज पहले उनकी करता हूँ। बाबा बहुत ठीक है, दीक्षा हो गई। हाँ दीक्षा यही थी। इस दीक्षा से क्या होगा? कोई निष्ठा ही नहीं आई। एतादृश महत्गण यदि ऐसे महात्माओं का समागम न हो, समागम माने क्या होता है? समागम उनके साथ में मिलना नहीं हो और वो नहीं आए हमारे पास में और उनका हम समागम है उसको हम ग्रहण न करें तो देवता जन्म मनुष्य जन्म सब विफल है, ये समझो। इसलिए आज ही से प्रतिज्ञा करो जितना भी कुछ होगा, कष्ट हो हमारे इच्छा के विपरीत होगा, किसी वैष्णव की मर्यादा को भंग नहीं करें, गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करें, शास्त्रों के वचनों को यथाजथ पालन करने की चेष्टा करें, ऐसे संकल्प ले लें। चाहिए प्रतिदिन संग करें, यदि नहीं मिल रहा है तो चैतन्य चैतामृत का संग करो, श्रीमद् भागवत का संग करो। और जो लोग इसका अर्थ समझते हैं, कुछ जीवन में उसको ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी सी कर्कशता है स्वभाव में, किसी और कुछ बातें हैं तो उसको ग्रहण कर लो, उसको असाधु मत समझो। स्वभाव के वर्ष से कुछ हो सकती है, कुछ दोष भी हो सकता है, इसलिए वो कहते हैं क्या रूप गोस्वामी क्या दृष्ट ही स्वभाव जलित बकुशस्थित, काला कल उठा है स्वभाव में, कुछ रुखरा है, कुछ कठोर भारती है वैष्णव, न मत विचार करो उधर, एकदम दुधार गाय का लात सह लेते हैं, दूध देने वाली गाय का ऐसे सह लो। जे काल पर्यंत विषयाभिमान सुन, जैसे फिर कहते हैं आगे, नैषा मतिस्ताम पूर्व क्रमांघ्रि स्पृशत्तनर्थापगमो जदर्थ मही असंग पाद्र जो अभिषेकम निष्किंचनानंग न पिणीत जावत। यह किसका है? प्रहलाद महाराज। बतलाओ तो किसको कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, बतलाओ। तो उत्तर दिया आपने कैसी बुद्धि नहीं है गुरु को ठंडा मत होगा। पिताजी ने उनको झड़क दी गुरुओं को, हमारे बच्चे को तुमने क्या पढ़ाया? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ाया, वो तो अपने आप हुआ नैसर्गिक की बालो बदल, ये बालक नैसर्गिक स्वाभाविक रूप में करा, हमने नहीं सिखलाया, दूसरों को ना उपदेश नहीं दिया। सब गुरुजी एकांत में ला करके कहिए बेटा तुम हमारा शिष्य है तो बतलाओ तो तुमको किसने शिक्षा दी, ऐसा जो कृष्ण कृष्ण बोलो। तो वो कह रहे हैं नैषा मति, इसका पहला एक और श्लोक है, मति न कृष्णे परतो सतो मिथो विपद्येत गृहतान अदांत गोभीर्विशतां समीशं पुनः पुनश्चर्वित चर्पणा। किसको किसको याद है जरा हाथ उठाओ तो, किसको किसको याद है? बस डुबा दिया नौका, यह नौका उद्धार होने वाली नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नौका डूब गई। अभी बाढ़ चल रही है ना, नौका डूब करके कालीनी कहाँ चलेगी, खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब ये जानते नहीं कि कहाँ का प्रसंग है, तो कैसे होगा। ये दो तीन आदमी हैं बस, बाकी सबको कोई प्रयोजन नहीं है। कोई डर के मारे उधर में बैठता है, कोई डर के मारे उधर बैठता है, कीर्तन पाठ में आएंगे नहीं, कहीं शुभानंद क्या जानता है बेकार का, वो ये क्या नाम सुधन्य जी, और वो तो बच्चा है, वो क्या पाठ है, इनको पाठ ही नहीं करना आता है। महाराज जी जब बैठेंगे तो बैठेंगे, यह दुर्बुद्धि है। कुछ सुनो समझो, आज एक श्लोक इतना भागवत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक और याद नहीं, कल यदि इस श्लोक को कोई भी याद करके नहीं आएगा तो उसे बैठने नहीं देंगे, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, सबको निकाल देंगे यदि कल याद नहीं करके आए, ये समझ रखो। क्या है इतना रॉड, रॉड हाथ में न रहे तो बच्चे न सोचा, अंग्रेजी कवि कहावत है, यदि हाथ में छड़ी ना हो ना तो बच्चे सब बिगड़ जाते हैं, ले शासन की भी जरूरत। कल हमने इस मठ में नहीं, अच्छा तो जाओ, ऐसे लड़कों की जरूरत नहीं है जो ऐसा नहीं जाते नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या जरूरत है, ये तो क्लास है ना भाई। नैषा मतिस्तामत उर्क्रमांग्रिं, इसकी मैंने व्याख्या कर दी थी, प्रहलाद महाराज जी अपने गुरु जी को इसको बतला रहे हैं, मतिर न कृष्णो, इसके बाद में ये मति भगवान में ऐसे नहीं होती, जो चर्बित चर्बित चर्बन करते हैं, चर्बित चर्बन को करता है कुत्ता सुअर गधे, ये सब एक मांस रहित हड्डी है बस, चर्बन करने वाले मांस नहीं है हड्डी में ना, तो दूसरा निकाल लिया है और हड्डी को चूस रहा है, और दूसरे कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर लिया, वो हड्डी छीन लिया, वो चर्बित को भी वो चर्बन कर रहा है। कभी कभी कुत्ता कुछ खा लेता है गंदी चीज और घास खा करके और फिर उसी को खाता, ये सब का तात्पर्य क्या है, इन विषयों को हमारे बाप ने खाया, हमारे दादो परदादों ने खाया, और हम अभी खा रहे हैं और फिर उसी को चबा रहे हैं, उसे वैराग्य नहीं होता है, इसी का नाम है चर्बी। ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों के द्वारा बुद्धि सुधने जो इसमें लगे हैं, चर्बी चर्पण कर रहे हैं, उनका परामर्श मत लो, उनसे नहीं होगा, और अपने भी बुद्धि नहीं जाएगी क्योंकि विषय में लगे, दोनों की बुद्धि के द्वारा भी नहीं होगा, उनसे परामर्श लेकर के करेंगे नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों से परामर्श न करो और अपने बुद्धि से भी मत चलो, चलो किसी के साथ साधु जो सचमुच में सकते हैं। तो ये लोग क्यों मत करो, इनकी बुद्धि बनी हुई है रस्सी से, त्रिगुण रस्सी, त्रिगुण जनता है, रस्सी किसको कहते हैं, त्रिगुण एक रस्सी बनाया लंबा ना, ऐसे ऐसे, अच्छा उसको ऐंठ दो और ऐंठ करके उसको तीन भाग कर दो, तो एक भाग को फिर उसके साथ में ऐसे ऐसे लगा दो, और फिर उसको जो बचा हुआ है उसको उसमें लगा दो, फिर तो ये तीन रस्सी हो गई। जो रस्सी बनाने वाले हैं वो जानेंगे, और दूसरे जो है नहीं, इसको त्रिगुण रस्सी कहते हैं, बड़ा भारी मजबूत होता है वो ये बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से जो होते हैं वो त्रिगुण होते हैं। ऐसे ही वेदों की जो परिपक्व त्रिगुण की रस्सियां हैं, वेद निर्मित, क्या क्या है वो वेद निर्मित, माता पिता की सेवा से बढ़कर के और कुछ नहीं है, माता पिता ही अतिथि भगवान है, दरिद्र ही नारायण है, आजकल एक नई धुन उठी है दरिद्र ही नारायण, दरिद्र नारायण की सेवा। ऐसे ही अक्षय, स्वर्ग लाभ इत्यादि, ये सब वेद की पुष्पित त्रिगुणित मिश्रित ये रस्सियां इसे बंधे हुए, भगवान के लिए भजन नहीं करते ये लोग, जैसे शुक्राचार्य उनके पुत्रों की बुद्धि इसी में बंधी, उसके द्वारा वो बंधे, इससे ऊपर उठ करके भगवान का भजन का उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए करें जब तक विषय अभिमान शून्य किसको कहते हैं, विषय अभिमान शून्य निष्किंचन महत्व का संग न हो। पहले वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान ज विसहेत धीर सर्वम अपिमां पृथ्वी सस्यात्। छ वेग जिनके लिए इंद्रिया विषयों से उपरत हो, विषयों में न रहे, भोग की लालसा न रहे, अन्य अभिलाष शून्य हो, स्वर्ग क्या मोक्ष तक भी अभिलाषा जिसके हृदय में नहीं है, इस प्रकार के निष्किंचन संसार के किसी भी पदार्थ में यह है मेरा ये भाव नहीं रहता, इसको कहते हैं निष्किंचन महत्व। वे महत्पुरुषों की पदधूलि के द्वारा अभिषिक्त न हो। पदधूलि के द्वारा अभिषिक्त का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि यदि वैष्णव पदधूलि नहीं देते हैं तो उनको उठा करके पटक करके भी जबरदस्ती चरण धूलि को ले लिया जाए, इससे भक्ति हो जाएगी। भाई इससे नहीं होगी। जैसे दुष्ट लोग शिव विग्रह को पत्थर मान करके तोड़ने जाते हैं तो शिव विग्रह उसके पहले ही चले जाते हैं, उसी तरह से वैष्णव की जबरदस्ती चरण धूलि से नहीं होगा। देखते हैं कितना धस्ता धस्ती करने लगते हैं, वैष्णव को पटक देते हैं उठाकर और उसके चरण धूलि को अपने सिर पर रगड़ते हैं, या वैष्णव दुर्बल है ना उनके चरण को अपने सिर पर रख करके ऐसे रगड़ते हैं, ये सब दुर्बुद्धि है, इससे भक्ति नहीं। चरण धूलि क्या है, उनकी सेवा, उनकी प्रति वासना ही चरण धूलि है ऐसा समझो। ये नहीं कह करके जबरदस्ती चरण धूलि रगड़ेगा पटक करके, अब वैष्णव गिर गए चरण धूलि लगा करके ऐसे रगड़ रहे हैं, भाई इससे और अपराध होगा। अरे लेने की चाह तो ऐसे लोग वैष्णव जा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ा जिस जहां पर उन्होंने चरण रखा है आगे चले गए, पीछे से जाकर के चरण की धूलि को लेकर के श्रद्धापूर्वक हृदय में लगाओ, यहां पर लगाओ, आंखों में लगाओ, ये सब तरीके होंगे श्रद्धा। वैष्णव बैठ रहे हैं वैष्णव प्रसाद पाने के लिए, गुरुदेव आप थोड़ा सा उच्छिष्ट दे दी, गुरु जी बड़े संकोच में क्या करूं, नहीं गुरुदेव अरे मैं उचित नहीं देता, प्रभु जी आप जरूर दें, थोड़ा सा इसमें से निकाल करके दे दिए, ये प्रसाद भी नहीं है, स्थूल बुद्धि वाले ऐसा कर, ऐसा मत करने जाओ, इससे भक्ति नहीं, इससे नहीं हो। अरे यदि उस चीज से ही लेना है तो झाड़ू मंडल झाड़ू ठाकुर जी उनका पदानुसरण करो, कैसे नीच जाति के ऊपर से जाति के नीच जाति लगते हैं, नीच जाति नहीं है, शूद्र कुल में उद्भूत, और उनको आम ले गए खूब बेशकीमती अच्छा मीठा दे दिया खाने के लिए, उन्होंने खा करके वो चले गए वहां से, और उन्होंने खा करके ठाकुर जी को भोग लगा करके खा करके फेंक दिया, तो वो पीछे से आकर के उस भूरे से आम की गुठली को चाटे को कृष्ण प्रेम में डूब गए। ये तरीका है, इन्हें जब गुरु जी बैठे हैं वो भी ऐसा विरासन लगा करके बैठ गए, गुरुदेव आप कुछ हिस्सा दीजिए, एक ग्रास दीजिए, आप जो खा रहे हैं उसी को चबाए हुए से निकाल करके, वाह वाह कैसी गुरु भक्ति वैष्णव, ये सब तरीका नहीं। निष्किंचन बतला रहा हूं, निष्किंचन कौन है और उनकी सेवा भी एक ऐसी जो कृष्ण के अतिरिक्त तो उनका कोई भी नहीं है ऐसा समझने वाले, जिनके काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य विषयों के भोग की अभिमान ये दूर हो। सचमुच में अष्टकालीय सब समय कृष्ण की सेवाओं का चिंतन स्मरण और कीर्तन करते हैं, ये लोग निष्किंचन वैष्णव हैं। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी कुछ भी उनका नष्ट नहीं हुआ, ऐसे महापुरुष लोग सारी जगत की संपत्ति मिलने पर भी चित्त इधर उधर नहीं होता, ये निष्किंचन वैष्णव है। किंतु भक्ति में थोड़ा सा कुछ हो गया प्राण उनका चला जाएगा। ऐसे महत्कणों के चरण की धूलि से अभिषिक्त यदि नहीं हुआ तो भगवान के चरणों को हमारी मति नहीं छू सकती है। इसलिए ऐसे वैष्णवों का संग चाहिए। तात्पर्य इसका सनातन गोस्वामी दे रहे हैं। इस श्लोक के पहले ही एक श्लोक बतला है, मते कृष्णे परतो, इसके पहले कहा है अभी और अभी नते बितु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया जे बहिरात समाने। दुराशय दुष्ट माने दुराशय। दुराशय किसको कहते हैं? जिनका आश्रय माने हृदय मलिन। क्या मलिन? विषय के द्वारा, अपराध के द्वारा, अनर्थ के द्वारा मलिन है। ऐसे लोगों की मति भगवान के चरणों में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। यदि तनिक भी विषय है, वकील कहते हैं एक चिंसुरा के हमसे, आप लोगों के गुरुजी बड़े बहुत उत्तम व्यक्ति हैं, उनकी एक शिक्षा हमने याद कर लिया, वही पालन जीवन में करते हैं, तो क्या ये समझो कि सारे जितने हैं ये भगवान के सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रही हैं। मैं वकालत में जाता हूं, मैं समझता हूं कि आज भगवान की ये सेवा कर रहा हूं, झूठ भी बोलता हूं तो भगवान की सेवा कर, और जितने रुपए मिलते हैं अपनी पत्नी को देता हूं तो समझता हूं ये भगवान ही हैं, इनको दे रहा हूं, अपने बेटे को देता हूं। मैंने कहा जी आप तो बहुत अच्छा समझा। अच्छा एक बात समझो, हम लोग भगवान की कुछ सेवा करते हैं तो हाँ, अच्छा एक दिन का वेतन हमको दे देंगे या आपको जो कोर्ट में मिल गया वही हमको दे, हम सब भगवान की, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, हम अपनी बीवी को ही देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। बीबी का अतिरिक्त और कोई भगवान का सेवक नहीं। ये लोग धूर्त है, उनकी अंतिम दशा भी वैसे ही बीती। इसलिए ये विचार सब ठीक नहीं है। तो सब जिनका अंतःकरण सब समय विषयों से मलिन है, विषय से मलिन है, इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार भी उसमें है, विषय में भोग की लालसा है, ये मेरा है, ये उनका है, और उसके लिए विवाद, दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, साधु गुरु वैष्णव की आदेश नहीं पालन करेंगे, समझो क्या है? चित्त मलिन, इसको साफ करना है। जो निष्कपट होंगे इनको समझेंगे, नहीं समझेंगे वैष्णव लोग जब आंगुल दिखा करके कहेंगे ये तुम्हारा दोष है, अंततः उसको मान करके हम उसको सुधार करने की जो चेष्टा करते हैं उनको भी वैष्णव मान लिया जाए। आज जो कहने पर भी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, नहीं मानते भाई वैष्णव, इनका आशय बहुत ही दुराशय है। वे लोग भगवान को कभी नहीं जान सकते हैं जिनका अंतःकरण ऐसा है, अशुद्ध है, इसलिए उसको शुद्ध करने की चेष्टा करें। कैसे शुद्ध होगा? बस एक ही उपाय है। क्या उपाय? ऐसे जो निष्किंचर वैष्णव है उनके चरणों की धूलि से अभिषेक। यहाँ पर धूलि माने कृपा, कृपा माने उनकी हरि कथा, आदेश, निर्देश, ये सब। वो बहिरर्थमानी, अर्थात इंद्रियों के भोगों को ही वो समझते हैं। कैसे भोग किया जाता है और भोग में आसक्ति है, बस इसी को जानते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। इसलिए ऐसे जब जिनकी दुष्टमति है, दुराशय है, उनसे अनर्थ और बढ़ेगा, मति और मलिन हो जाएगी। इसलिए मलिन यदि शुद्ध करना चाहते हो तो भगवान के चरणों को स्पष्ट करना चाहते हो तो निष्किंचन जो वैष्णव हैं उनका संग करो। कोई गया फलत, अब सनातन गोस्वामी करें फलत कंक्लूजन। महद अनुग्रहों का भी यदि अभाव है, भगवत भक्तों ऐसे महत्पुरुषों की कृपा का यदि अभाव है, उन्होंने नहीं कृपा की, हमने उनके कृपा नहीं ली, तब किसी प्रकार से तत्व नहीं समझ में आएगा, उसकी मति कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं करेगी और वो हरि गुरु वैष्णवों की भी सेवा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे हृदय यदि किसी का है निष्कपट रूप में उसको शुद्ध करने की चेष्टा करो। कैसे होगा? उन्हीं के वाणियों से, ऐसे निष्किंचन वैष्णवों के संग में ही होगा। दसवें स्कंद में सनातन गोस्वामी अब और दे रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवेज्जनस्य तरहि सत्समागम सत्संगमो जरहि तदैव सदगतौ परावरेशे त्वयि जायते रति। परावरेशे त्वयि जायते रति। हे अच्युत, आप अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, और हम लोग क्या करते हैं? स्वभाव से पुनः पुनः विच्युत होते हैं। इसलिए आपके वचनों में हमारा विश्वास है, आप अच्युत हैं, आपके वचन अच्युत है, आपका स्वभाव अच्युत है, आप अपने स्वभाव से कभी नहीं गिरते। अर्थात दूसरों पर दया करने का आपका स्वभाव है, भक्त वत्सल है, ये कभी इससे च्युत नहीं होते। हे अच्युत, अपना अनुग्रह करें, आपके अनुग्रह से। ये कौन कह रहा है? मुचकुंद का है। मुचकुंद का उपाख्यान सुना है? कभी सुना है? कहाँ का है? विष्णु पुराण का है ना महाभारत का, ना कहाँ का है? कि चैतन्य चरितामृत का प्रसंग है, कहाँ का है भाई मुचकुंद का? हैं, भागवत का है, कहाँ पर है मुचकुंद का प्रसंग? कहाँ का भाई, तुम बोलो तो पंडित जी। ओ वो कहाँ का प्रसंग है ये मुचकुंद जी? ये ब्रज क्या है ना, कहाँ का प्रसंग है, कौन जगह का? ब्रज का लीला का वर्णन है ना, ना कहाँ का है? की रकम समय जाते ये तो बुझो, तुम बतलाओ तो कहाँ का प्रसंग है, कौन जगह का है? कौन खदेड़ रहा था? काल जमन। और वो जब जल गया मुझको उनकी दृष्टि से, तो वो जग करके देखा, फिर सांबधारी भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके ये प्रभु से विनय कर रहे हैं। हे अच्युत, आपके अनुग्रह क्रम से संसार में संलग्न जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, अब जब उनका भोग करते 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 कोटि कोटि जन्मों के बाद में जब क्षय काल समाप्त होता है, संसार अब नष्ट होने के लिए तैयार होता है, तब साधु संग होता है। अर्थात जब साधु संग कब होता है? संसार उसका भगवान की कृपा से, अब वो संसार में जन्म मरण उनको नहीं देना है, उन पर कृपा हो गई तो क्या करेंगे? कृपा करके, अनुग्रह करके, तब वे साधु संग लाभ करते हैं। देत ईश बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के ही साधु संग भगवान दे देते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई पूर्व जन्म में किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु साधु की किसी की निष्कपट कृपा हो गई जिसे साधुओं का संग मिल गया, गुरु जी का संग मिल गया, है शास्त्रों का संग मिल गया। नहीं तो बड़ा भारी कठिन है, कोटि कोटि लोगों में से ही इधर जाना बड़ा भारी कठिन है भाइयों। सत्संग के प्रभाव से संसार बंधन छेदन की बात नहीं, क्या कहूं, कैसे अपने आप हो जाता है। हाथ में तलवार आई और अपने आप वो कट गया। ये तलवार क्या है? साधु संग में जो वचन होते हैं उनके, हरि कथा, यही पैनी तलवार है। संत ए वास छिंदंती मनोव्यासंग उक्ति भी, उक्ति भी अपनी कठिन तलवार रूपी उक्ति से भावबंधन को काट देते हैं। क्यों? अभी ये तलवार चल रही है, धरा खपा खप चल रही है तलवार, अभी इस समय तलवार ही चल रही है। यदि इसके वार को ठीक से समझ लिया जाए, जरूर साधु संग होकर के चित्त शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आज जो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं अनुसरण करेंगे, उनका नहीं होगा। उस समय में जब सत्संग होता है तब परावरे से सही जायते रति, परावरे से बराबर ऐसे माने पर और अबर इसे आप कौन है जो अच्युत पहले कहा वही आप पर माने क्या पर माने मुक्त महापुरुष लोग हैं अथवा जो भगवत अवतार हैं पर इनके भी श्रेष्ठ आप हैं और अवर जो बद्ध जीव या जीव लोग हैं या इंद्र इत्यादि देवता हैं या दूसरे लोग हैं इनके भी इस स्वरूप कौन है ये कृष्ण है अथवा कार्य और कारण कार्य माने पर नहीं कारण है पर और कार्य है अवर दोनों को नियंत्रण करने वाले जो पर ब्रह्म स्वरूप जो कृष्ण है अथवा अवर कहने से अर्वाचीन जीव ब्रह्मा जी ईश्वर और देवता लोग उन लोगों की बुद्धि कैसी होती है गौरव रूप में भगवान में लगती है तुमने लगती है गौरव रूप में कौन किनकी साधारण जीवों की आपके संग होने से भगवान के तरफ में गौरवपूर्ण बुद्धि लगेगी पूज्य बुद्धि दास्य भाव से और जो तुम्हारे शुद्ध भक्त हैं प्रियतम रूप में नहीं होगा अर्थात ब्रज का भाव नहीं होगा और दूसरे जो हैं भक्तों के हृदय में एकमात्र आपके चरणों में रति होती है शुद्ध भक्तों के हृदय में रति माने भाव उनके चरणों में उत्पन्न होता है प्रेम अभिभूत होता है एकादश स्कंद में पुनः कहते हैं एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को बतला रहे हैं जो उद्धव संदेश के नाम से उद्धव संवाद के नाम से कृष्ण गोलोक वृंदावन में जाने की तैयारी में है अपनी लीला को अप्रकट करना चाहते हैं उसमें उद्धव को लक्ष्य करके किंतु संसारी जीवों के लिए जो कह रहे हैं ये उपदेश उसको वर्णन कर रहे हैं भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं जथोपश्यम मानस्य भगवंतम विभावसुम अन्नम ही प्राणी नाम प्राण आतानम शरणम स्वहम धर्मो वित्तम नृणम प्रत्य संतो और वाग विभव्यतो रणम संतो दिशंति चक्षुंसि बहिरर्क समुत्थित देवता बांधवा संत एव संत आत्मा अहमेव च कह रहे हैं इसका अर्थ जैसे भगवान विभाव अग्नि अग्नि के समीप जाने से ही अग्नि जल रही है और उस समय उनके निकट जाने से सेवा करने सेवा मैंने ऐसे हाथ कर दिया उनके निकट जा करके तो जैसे शीत ठंडक दूर हो जाती है अंधकार दूर हो जाता है आग जलने पर अंधकार रहता है वो दूर हो जाएगा और सर्प इत्यादि का भय इत्यादि दूर हो जाता है जंगल में यदि जाना है तो एक लकड़ी में कपड़े बांधकर उसमें किरासन का तेल लगा दो और उसमें जसलाई लगा दो और उसको लेकर के लैंप यदि जाओ बाघ भालू सिंह हाथी कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा सर्प इत्यादि भाग जाएंगे भालू तो देख करके इतना जोर से भागेगा ये अब मरा क्योंकि उसके केस है ना झट वो लग जाएगा इसलिए भाग और किसी तरह से नहीं भागते तो जितने शीत ठंड ये शरीर के अंदर में ठंड है ये भी दूर हो जाएगा शरीर के अंदर और अंधकार ये बाहर का और सर्प इत्यादि का भय ये सब दूर हो जाता है उसी प्रकार से साधुओं की सेवा करने से क्या होगा उससे भी अधिक होगा लाभ क्या होगा सारी क्लेश दूर हो जाएंगे जितनी अज्ञानता रूपी तमह अंधकार है ये सब भी दूर हो जाएगा और साथ साथ में भगवान की सेवा प्राप्ति रूप अमृत का पान भी मिल जाएगा ये तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी यहाँ पर तम से किसको समझना चाहिए कर्मों में अभिज्ञता मैं बहुत कर्मी हूं कर्म कुशल हूं कर्मादि जाट्य और उससे भगवान की सेवा में जड़ता आ गई। संसारी कामों में तो खूब तेज है, रसोई बनाने में खूब दक्ष हैं, बात बनाने में खूब पटु हैं। बात बनाने में सहेलियां यदि मिल जाती हैं तो 50 जीवा निकल आती है, और हरिनाम करने में सिर्फ मानो वज्र पड़ जाता है, और भगवत चिंतन मंत्र करने में क्या तकिया और बालिश की भी जरूरत हो जाती है सोने की, उसमें रुचि ही नहीं है। यही कह रहे हैं, ये तम से ही इसको समझो। तम माने हम लोगों के लिए समझो, भगवत भजन में रुचि नहीं होना यही तम है। भगवान का तत्व ज्ञान है ये नहीं होना, ये अंधकार है। वैष्णव चित्त गुणों का नहीं होना ये भी तम है। आगामी संसार का भय, अभी तो हम संसार में आ गए हैं, गारंटी से संसारी लोग कहेंगे जब हम आएंगे कि नहीं आएंगे, कहां जाएंगे, क्या होगा। हम लोग कुछ कुछ कह सकते हैं, उसके कर्मों को देख करके कह देंगे कहां जा सकता है, कैसा इसका जन्म होगा, हम लोग कुछ अनुमान कर लेंगे। संसारी लोग अनुमान नहीं कर सकते इस चीजों का। तो आगे संसार का जो भय है, यदि भजन नहीं करेंगे तो संसार का भय आएगा ही, ये भी दूर हो जाता है, और अभी जो कर्म की दक्षता इत्यादि ये भी दूर हो जाएगी, और संसार का जो मूल कारण है भगवत तत्व में अज्ञान ये भी दूर हो जाएगा। भगवत भक्ति की महिमा के विषय में ये जो अज्ञान है ये भी दूर हो जाएगा। मूल श्लोक में जो उप है उपस्थ्रयमानस्य, उप आश्रय, आश्रय लेते हैं कहां, उप से, यदि दूर से भी लेते हैं वहां पर उप शब्द का प्रयोग, निकट से नहीं, समीप भी होता है दूर भी होता है, यहां पर उस शब्द का अधिक